नमस्कार भारत, तारीख 19 नवंबर दिन गुरुवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। पेरिस में 7 घंटे तक चला अभियान, 2 लोगों की मौत, 8 गिरफ्तार, लेकिन हमलों का मास्टरमाइंड नहीं आया गिरफ्त में। मोदी की तारीफ में शॉर्ट फिल्म बनाकर विवादों में घिरे सेंसर बोर्ड के प्रमुख पहलाज निलहानी।
मुझे उससे क्या लेना देना है, वो जो खुद वो लोग कर रहे अपने गृहबान में जाके देखे कि वो क्या कर रहे हैं। मैं मैडम मैडम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी मोदी कर रहा हूँ।
जन लोकपाल विधेयक को दिल्ली सरकार की मंजूरी और बात होगी बाबा रामदेव के नूडल्स पर हो रहे विवाद की भी, खबरें खेल की भी, लेकिन सबसे पहले BBC समाचार।
BBC समाचार मानसी दाश से। पेरिस में हुए हमलों के मास्टरमाइंड अब्दुल हमीद अबाउद को पकड़ने की कोशिश में पुलिस ने 100 डिनी के एक घर में छापा मारा। तकरीबन 7 घंटे चली इस कार्यवाही में कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें 7 पुरुष और 1 महिला हैं। पेरिस के प्रोसिक्यूटर फ्रांसुआ मोली ने कहा है कि इस मुठभेड़ में बीते शुक्रवार हुए हमलों के मास्टरमाइंड अब्दुल हमीद अबाउद को पकड़े या मारे जाने की कोई खबर नहीं है। मुठभेड़ में 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि उसने 2 विदेशी बंधकों की हत्या कर दी है। इनमें से 1 बंधक नॉर्वे का था, जबकि दूसरा चीनी नागरिक था। IS का कहना है कि नॉर्वे और चीन की सरकारों ने फिरौती की रकम नहीं दी, जिसके बाद बंधकों की हत्या कर दी गई। सबूत के तौर पर IS ने दोनों बंधकों के मारने से पहले की और बाद की तस्वीरें जारी की। नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने कहा,
ISIL hevder i dag at de har henrettet Ole Johan.
ISIL ne dava kiya hai ki unhone Ole Johan Grimsgard Hofstad ki hatya ki hai. Abhi hamare expert iski jaanch kar rahe hain ki tasveer kitni sach hai, lekin abhi tak is par sandeh karne ka hame koi karan nahi mila. Hamare desh ke nagrik ke sath is tarah ke vyavhar ki koi wajah nahi ho sakti. Na to yah kisi dharm mein hai, na hi kisi vichardhara mein. Yah ghrinit aur nirdayata se kiya gaya kaam hai. ये थे नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर पेरिस से अमेरिका की ओर जा रहे एयर फ्रांस के 2 विमानों का रास्ता बदल दिया गया है। एयर फ्रांस ने बताया कि विमानों के उड़ान भरने के बाद अज्ञात धमकियां मिली थीं। इसके बाद एक विमान को कनाडा के हेलीफैक्स में उतारा गया, जबकि दूसरे विमान को अमरीका के यूटा के सॉल्ट लेक सिटी हवाई अड्डे पर उतारा गया। हेलीफैक्स में उतारे गए विमान की जाँच जारी है, जबकि यूटा में उतारे गए विमान को सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। होंडुरास की पुलिस ने कहा है कि उन्होंने चोरी किए गए ग्रीक पासपोर्ट पर सफर कर रहे 5 सीरियाई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ग्रीक के अधिकारियों ने राजधानी टेगुसिगाल्पा में हवाई अड्डे पर इनसे पूछताछ की। अधिकारियों का कहना है कि इन 5ों में से किसी ने ग्रीक में 1 शब्द भी नहीं बोला। ब्रितानी संसद के ऊपरी सदन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 16-17 साल की उम्र के युवाओं को नियोजित जनमत संग्रह में 1 वोट दिए जाने का समर्थन किया है। यह जनमत संग्रह यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन के रहने या न रहने के बारे में है। सरकार वोट करने की उम्र को 18 साल से कम करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का मानना है कि यदि युवाओं का बहुमत किसी एक पक्ष का समर्थन करता है तो इससे नतीजों की सच्चाई पर असर पड़ सकता है। जनमत संग्रह साल 2017 के अंत से पहले किया जाना है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ सुन रहे हैं bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। पिछले हफ्ते हुए चरमपंथी हमलों के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए पेरिस को कल फिर चुनौतीपूर्ण हालात से दोचार होना पड़ा। शहर के उत्तरी हिस्से सोंडिनी इलाके में चरमपंथियों की धरपकड़ के लिए लगभग 7 घंटों तक सुरक्षा बलों का अभियान चला। इस दौरान लगभग 5,000 गोलियां दागी गईं, 2 लोग मारे गए और 8 संदिग्ध चरमपंथी गिरफ्तार किए गए। लेकिन पेरिस के अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में अब्दुल हामिद अबाउद नाम का वो चरमपंथी शामिल नहीं है जिसे पेरिस हमलों का मास्टरमाइंड समझा जा रहा है। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए मानसी दास से।
फ्रांस فرانس کی پولیس جلد سے جلد عبدل حمید اباؤد کو پکڑنا چاہتی ہے۔ عبدل حمید اباؤد کو بیتے شکروار پیرس میں ہوئے حملوں کا ماسٹر مائنڈ مانا جا رہا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کا سدسیہ بتائے جا رہے عبدل حمید کو پکڑنے کے لیے پولیس نے پیرس کے اتر میں سونڈینی میں ایک گھر پر چھاپا مارا۔ مٹ بھیڑ میں دو لوگوں کی موت ہو گئی۔ ایک مہیلا نے خود کو اڑا لیا جبکہ ایک ویکتی کو پولیس کی گولی لگی۔ لیکن اس میں حملوں کی سازش رچنے والے عبدل حمید اباؤد اور ایک دوسرے آروپی عبد السلام صالح کے پکڑے یا مارے جانے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ پیرس کے ابھیوجک فرانسوا مولی نے بتایا،
کل آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں سات پرش اور ایک مہیلا ہے۔ ابھی ان سے پوچھ تاچھ چل رہی ہے۔ جن لوگوں کو بلڈنگ سے پکڑا گیا ان کی پہچان کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ان میں عبدل حمید اباؤد اور عبد السلام صالح نہیں ہیں۔
یہ تھے پیرس کے ابھیوجک فرانسوا مولین۔ پولیس کا یہ ابھیان تقریباً سات گھنٹے چلا، جس میں لگ بھگ ایک گھنٹے تک دونوں پکشوں کے بیچ گولی باری ہوئی۔ پولیس نے قریب 5,000 گولیاں چلائیں۔ مکھیہ بلڈنگ پر اتنی گولیاں چلیں کہ یہ بری طرح کھتیگرست ہو گئی اور اب گرنے کی حالت میں ہے۔ مٹ بھیڑ کے چشمدید روڈریک نے بتایا،
میں
نے بے حد بری چیزیں نہیں سنی، لیکن میں نے کئی آوازیں سنی، گولیوں کی آوازیں۔ آپ بتا سکتے تھے کہاں سے گولیاں چلی؟ وہ دھیان سے نشانہ لگا کر گولی چلا رہے تھے، پھر وہاں مشین گنیں تھیں، گولیوں کا جیسے کوئی سیلاب سا تھا، لوگ گھائل ہوئے، بلڈنگ کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ یہ تھے سونڈینی میں پولیس مٹ بھیڑ کے چشمدید روڈریک کے شبد۔ جہاں ایک اور فرانس میں آروپیوں کو پکڑنے کے لیے دھرپکڑ تیز کر دی گئی ہے، وہیں فرانسیسی راشٹرپتی فرانسوا اولاں نے پھر سے ایک بار چرم پنتھ سے نپٹنے کے لیے انتراشٹری سمودائے سے اپیل کی ہے۔ میئرز کی ایک بیٹھک کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
Nous devons former une large coalition.
ہمیں ایک بڑا گٹھ بندھن بنانا چاہیے جو اسلامک اسٹیٹ کے خلاف زبردست کارروائی کر سکے۔ انتراشٹری سمودائے کے سدسیہ ہونے کی بھاونا سے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ دیشوں کے اپنے سوارتھ ہیں، اپنی سوچ ہے، لیکن یہاں ہمیں ایک ایسے گٹھ کو انجام تک پہنچانا ہے جو بس کچھ دیشوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے۔
فرانسیسی راشٹرپتی فرانسوا اولاں کے شبد۔
بی بی سی سنواداتاؤں کی بھیجی رپورٹوں کا سار آپ کو سنا رہی تھیں مانسی داش۔ شکروار کو ایک کے بعد ایک کئی حملوں میں 129 لوگوں کی موت، اور اس کے بعد پھر کل شہر کے ایک رہائشی علاقے میں گھنٹوں تک سرکشا بلوں کا ابھیان۔ ایسے میں شہر کے عام لوگ اپنے آپ کو کتنا سرکشت یا پھر کتنا اسرکشت محسوس کرتے ہیں، یہی جاننے کے لیے میں نے پیرس میں موجود بی بی سی اردو سیوا کے ہمارے ساتھی جاوید سمرو سے ٹیلی فون لائن پر سمپرک کیا۔
یہاں جو یہ آپریشن ہوا وہ خاصا بڑا آپریشن تھا، اور یہاں پر جو پولیس ہے وہ اس کو بہت زیادہ اہم اور امپورٹنٹ سمجھتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو پولیس یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں یا جو مارے گئے ہیں وہ زیادہ اور حملوں کی ایک پلاننگ کر رہے تھے، اور وہ شاید زیادہ امپورٹنٹ جگہوں پر حملے کرتے، تو ان کی گرفتاری اور ان کو مارے جانے سے فرانس کی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ناکام بنا دیے ہیں اور مزید حملے ہونے سے۔ لیکن یہاں پر اس بات کو لے کر ایک ظاہر شہر میں اس سے خوف و ہراس پھیل گیا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی رات کو ہونے والے حملے اور اس کے بعد سے پولیس کارروائی کے بعد بھی ان کے نیبر میں، ان کے قریب ہی اگر اس طرح کے چرم پنتھی موجود ہوں تو ظاہر لوگوں میں ایک سسپیشن اور تشویش ہے، تھوڑا سا خطرہ ہے۔ لیکن صدر اولاند نے آج لوگوں سے کہا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ جو فرانس کی پولیس ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور زیادہ حملوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔
جی، ابھی تک جو مکھیہ شڑینتر کرنے والے سمجھے جا رہے ہیں ابود، ان کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اس بات کو لے کر جو فرانس کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی کافی آلوچنا بھی ہو رہی ہے، میں ایسا دیکھ رہا تھا۔
بالکل، ان کی بہت آلوچنا ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ فرانس کی جو سیکیورٹی سروسز ہیں انہوں نے پہلے اس شخص کو بیلجیم جانے دیا جو جس کو روکا بھی تھا، جو کہ صالح عبد السلام تھا، جس جو اب فرانس کا سب سے زیادہ مطلوبہ شخص یا سب سے زیادہ وانٹڈ شخص بن گیا ہے, اس کو ان کو اس کو روکا بھی اور اس کو پہچانا نہیں, اس کو جانے دیا. تو ایک تو اس پر اس ناکامی پر آلوچنا ہو رہی ہے. پھر دوبارہ یہ ہوا کہ اس بندے کے لیے جو کہ مکھیا ماسٹر مائنڈ سمجھا جا رہا ہے, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ابوج, وہ کہتے رہے کہ سیریا میں ہے, لیکن پھر آج ان کو کہنا یہ ہے کہ وہ یہیں پر پیرس کے نارتھ میں سان ڈینی ایریا میں موجود تھا. تو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں, میڈیا یہ سوال اٹھا رہا ہے, یہاں کے جو اینالسٹ ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پھر سیکیورٹی ایجنسیز کتنی ناکام ہوئی ہیں اور وہ بار بار غلط انفارمیشن ان کے پاس کیوں ہوتی ہے.
یہ تھے جاوید سومرو پیرس سے بتا رہے تھے کہ کس طرح پیرس حملوں کو لے کر فرانس کی سرکشا ایجنسیوں کو کڑی آلوچنا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا. مہینوں کے پرتیبندھ کے بعد نیسلے کا چرچت میگی نوڈلز تو بازار میں لوٹ آیا ہے, لیکن اسی کے ساتھ حال میں ایک اور نوڈلز برانڈ بازار میں آیا, اور یہ نوڈل یوگ گرو رام دیو کے پتنجلی سنستھان کا ہے. لیکن بازار میں آتے ہی یہ ویوادوں میں بھی گھر گیا ہے. آروپ لگ رہے ہیں کہ پتنجلی نے بھارتی کھادیہ سرکشا ایوم مانک پرادھیکرن یعنی ایف ایس ایس اے آئی سے منظوری لیے بنا ہی نوڈلز کو بازار میں اتار دیا. حالانکہ رام دیو اس سے انکار کر رہے ہیں. ایک رپورٹ کے ساتھ روہت جوشی.
بیتی 16 تاریخ کو دلی میں پتنجلی کی اور سے بابا رام دیو نے اپنا نیا اتپاد آٹا نوڈلز بازار میں پیش کیا تھا, لیکن پتنجلی کا یہ نیا اتپاد ترنت ہی ویوادوں سے گھر گیا ہے. ویواد اس بات کو لے کر ہوا ہے کہ پتنجلی نے اپنے اس نئے اتپاد کے لیے بھارتی کھادیہ سرکشا ایوم مانک پرادھیکرن یعنی ایف ایس ایس اے آئی سے منظوری نہیں لی ہے, لیکن اس انسٹنٹ نوڈلز کے پیکٹ پر ایف ایس ایس اے آئی کا لائسنس نمبر لکھا ہوا ہے. بھارتی کھادیہ سرکشا ایوم مانک پرادھیکرن کا کہنا ہے کہ اس کی طرف سے بابا رام دیو کی کمپنی پتنجلی کو انسٹنٹ نوڈلز بنانے کے لیے کوئی بھی لائسنس نہیں دیا گیا ہے. لیکن ایف ایس ایس اے آئی کے دعوے کو غلط بتاتے ہوئے پتنجلی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے پاس آٹا نوڈلز بنانے کا لائسنس ہے. اس پر بابا رام دیو نے بھی ٹپنی کی ہے
کہ پتنجلی آٹا نوڈل کے لیے جو پروڈکٹ اپروول ہے, جتنی یونٹس میں بن رہا ہے سب جگہ پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کے لیے اپروول ہے, اور پتنجلی آیوروید کی طرف سے جو بیچا جا رہا ہے اس کے لیے بھی ایف ایس ایس آئی سے انومتی لی ہوئی ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی اللیگلٹی پتنجلی آیوروید نے نہیں کی ہے.
3 دن پہلے بازار میں آئے اس آٹا نوڈلز کا سواد ابھی اپبھوکتاؤں کی زبان پر شاید نہیں چڑھا ہوگا, لیکن کانگریس نے اس پر ہوئے وواد پر ضرور چٹکارے لیے ہیں. کانگریس کے پروکتا ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا,
ایک نیا یوگاسن شروع ہوا ہے کچھ ہفتوں سے, اس یوگاسن کا نام ہے نوڈل آسن. نوڈل آسن کے انترگت آپ نوڈلز کو اتپادت کر سکتے ہیں. اس اتپادت کے لیے آپ کو کوئی بھی انومتی کی آوشیکتا نہیں ہے, اور یہ بھی پرکاشت کر سکتے ہیں کہ اس نوڈل کے اتپادن کے لیے آپ کے پاس انومتی ہے, لائسنس ہے, نمبر ہے لائسنس کا, یدپی یہ مان کے چلا جا رہا ہے کہ نمبر نہیں ہے. یہ اتنا ادبھت اتنا پربھاوشالی جو آسن ہے, اس کو سب کو آپ کو اور ہم کو سیکھنا چاہیے.
پتنجلی کی اور سے انسٹنٹ نوڈلز کو اس وقت پیش کیا گیا ہے جب بھارتی بازار میں انسٹنٹ نوڈلز پر ایک چھتر راج کرنے والی نیسلے کمپنی کی میگی پچھلے دنوں وواد میں رہی ہے اور 5 مہینوں کا پرتیبندھ جھیلنے کے بعد دوبارہ سے بازار میں آئی ہے. پتنجلی کے اس انسٹنٹ نوڈل کا پھر سے بازار میں اتری میگی سے مقابلہ ہونا ہے, لیکن اس نئے وواد کا اس پر کیا اثر ہوگا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے. روہت جوشی, بی بی سی, دلی.
اور دوسری طرف فلمکار اور سینسر بورڈ کے پرمکھ پہلاج نیلانی بھی ان دنوں اپنے ایک میوزک ویڈیو کو لے کر ویوادوں میں ہیں. قریب 7 منٹ لمبی اس لگو فلم میں پردھان منتری نریندر مودی کی جم کر تعریف کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ بھارت ان کے نیتروتو میں وشو میں اپنی جگہ بنا رہا ہے, لیکن اس فلم کی بھاری آلوچنا بھی ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پر کئی لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. کارن یہ ہے کہ اس میں بات تو میک ان انڈیا کی گئی ہے, لیکن شارٹس دبئی, روس, ماسکو اور ٹور دے فرانس کے ہیں. ہمارے سہیوگی ونیت کھرے نے پہلاج نیلانی سے اس مسئلے پر بات کی اور ان کا پکش جاننا چاہا.
160 شارٹس, اس میں 5 شارٹ جو ہے, مطلب آنے والا کل ہمارا ایسا ہوگا, ہم لوگ ایئر کرافٹ میں بیٹھتے ہیں हम लोग डिजिटल इंडिया कल होगा तो कैसे हमारा स्पेस होगा, हम आप विजुअल इमेजिनेशन होती है ना, अपना कोई भी फिल्म होती है इमेजिनेशन होती है, विजुअल्स होता है, तो व्हाट इज अ बिग डील इन दैट मेक इन इंडिया। तो कल जो हम ऐसे ही सब चीजें बनाएंगे ना जो विदेश में बनती है वो आज हम यहाँ बनाएंगे।
लेकिन उसमें इंडिया से भी तो एग्जांपल्स उठाए जा सकते थे, उसमें बिल्डिंग मॉस्को का दिखाना, एयरक्राफ्ट नासा का दिखाना।
अरे पर उठाए तो कहीं से भी उठा सकते हैं हम। मैंने जो शॉट मेरे विजन में आता है वो मैं लूंगा, कि मैं जो विजन में नहीं आएगा वो दूंगा। जो मुझे लगता है कि कल हमारा भारत ऐसा होगा तो जो होगा वही होगा ना। आज हम इंडिया में फटाके बनते हैं तो चाइना से क्यों मंगाते हैं हम? आज हम प्लेन जो है ना इधर बनाते होते तो हम इंडिया का भी फ्लाइट जो है ना बाहर से क्यों लेके आते हैं?
लेकिन लेकिन पहला जी, क्या नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से करना ये सही एक उसको लेकर भी आलोचना हो रही है?
मैंने महात्मा गांधी की तुलना या किसी की तुलना किसके साथ नहीं किया, मैंने कहा
आप बापू और मोदी का जिक्र कर रहे हैं साथ।
मैंने ये किया है कि जो सपना देखा बापू ने, बापू और मोदी ने जो है आज सपना जो बापू का जो है हर पोस्टर
में, बापू और मोदी आप कह रहे हैं ना तो उसकी भी आलोचना हो रही है?
नहीं, अरे बापू और मोदी तो बापू पे बापू का शॉट दिखाया, मोदी पे मोदी का शॉट दिखाया।
नहीं, आप बापू और मोदी कह रहे हैं प्रहलाद जी, तो बात ये हो रही है जो आलोचना ये है कि आप दोनों को एक ही स्टेज पे खड़ा कर रहे हैं।
ये फिल्मी लैंग्वेज होती है कि जो आज जो है मोदी जी ने जो है जो चीज है सपना 100 ईयर ऑफ बापू जो है बनाएंगे कि नहीं। आज जो है स्वच्छ भारत जो है, स्वच्छ भारत का सपना बापू का था जो मोदी जी पूरा कर रहे हैं, और हम मैं उसमें कह रहा हूँ कि हमें मिलजुल कर पूरा करना है, वो हमें सबको मिलजुल कर पूरा करना है।
तो आप तुलना नहीं कर रहे हैं आपके?
नहीं, तुलना नहीं कर रहे, ये तो सब लोगों की अपनी सोच है, उन लोगों की सोच है जो देश से देश की में उन्नति करते हुए मोदी जी को और देश को जो है नहीं देखना चाहते
जी। लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे ये कहा जाएगा कि एक तरीके से ये चाटुकारिता है और कुछ नहीं, आप संसद बोर्ड के प्रमुख हैं।
आप जो भी समझो, मैं देश के प्रति अगर मैं इतना प्रभावित हूँ और प्राइम मिनिस्टर से इतना प्रभावित हूँ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जो जिसको मर्जी करे मुझे उससे क्या लेना देना है। जो खुद वो लोग करे अपने गृहबान में जाके देखे कि वो क्या कर रहे हैं। मैं मैडम मैडम तो नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी मोदी कर रहा हूँ
जी। लेकिन ये जो आलोचना है इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, आपने फिल्म फ्रेटर्निटी और कई लोगों ने अपने अवार्ड्स भी लौटाए, इस पर क्या सोच है आपकी?
मैंने वही कहा कि FTI के स्टूडेंट को जो है पुश किया जा रहा है इसमें धकेलने के लिए, वो अपने भविष्य को देखे, अपने काम को देखे और अपने इसको चलने दे। इन लोगों के ये जानबूझ के ये साजिश की गई है FTI के अंदर कि मतलब स्टूडेंट्स को यूज करके उन लोगों को यूज किया गया है जो पहले से प्राइम मिनिस्टर होने से पहले से ही जो है मोदी जी के खिलाफ थे और जो है इंडस्ट्री को डिवाइड करने में इन लोगों ने बहुत सारे काम किए, तो उसके जरिए इन्होंने इसको टूल बना के यूज किया।
ये थे फिल्मकार और सेंसर बोर्ड के प्रमुख प्रहलाद नीलहानी, जिनसे बात कर रहे थे हमारे साथी विनीत खरे। बढ़ते हैं आगे। कल दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने जन लोकपाल विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक ये बिल पास होने के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब तक विधेयक को पेश न किए जाने को लेकर विपक्ष काफी हंगामा कर रहा था और उसी के बीच दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। एक रिपोर्ट के साथ वैभव श्रीवास्तव।
बुधवार को जन लोकपाल विधेयक पेश किए जाने से पहले विधानसभा में भाजपा विधायकों ने आम आदमी पार्टी पर तीखे आरोप लगाए थे कि भारी बहुमत मिलने के बाद भी सरकार जन लोकपाल लाने में देरी कर रही है। हालांकि दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन इस मसले पर उसने भी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन देर शाम सरकार ने विधेयक पेश कर इसे कैबिनेट में पास करा लिया। बिल पेश करने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि ये दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बिल है जो आज दिल्ली कैबिनेट ने पास किया है। उन्होंने उन सभी लोगों को बधाई दी जो इस बिल के लिए काम कर रहे थे। मनीष सिसोदिया ने BBC से बात करते हुए कहा,
लोकपाल कैबिनेट ने पास कर दिया है, बस आगे अब समय उस पर लाएंगे, मतलब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इन सबसे डिस्कस करके उसको लेके आएंगे उसमें।
बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से बनाया गया ये बिल 2011 के उत्तराखंड के लोकपाल बिल पर आधारित है। कैबिनेट की ओर से पास हुए इस विधेयक के अनुसार अब दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का ऑफिस भी जन लोकपाल के दायरे में होगा। इस बिल में लोकपाल द्वारा किए जाने वाले फैसलों के लिए 6 महीनों का समय निर्धारित किया गया है। मनीष सिसोदिया से पूछे गए इस सवाल पर कि सरकार को इस विधेयक को पास करने में इतनी देरी क्यों लगी, उनका कहना था,
9 महीने अगर काफी समय है, 40 साल हो गए लोकपाल पे चर्चा करते करते, है ना, अभी तो हम 9वें महीने में पास कर रहे हैं इसको, और लोकपाल हमारा कमिटमेंट था, हम लेके आ रहे हैं, हमको ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि जुमला था, पार्टी का अस्तित्व तो भ्रष्टाचार विरोधी पूरी मुहिम पे है, लोकपाल उसकी फाउंडेशन है पूरी।
जन लोकपाल विधेयक उन 6 विधेयकों में शामिल नहीं था जिन्हें आम आदमी पार्टी इस सत्र में पेश करने वाली थी। विपक्ष के दबाव के चलते केजरीवाल सरकार ने इसे जल्दबाजी में पेश किया है। हालांकि सरकार का कहना है कि वे जन लोकपाल को जल्द से जल्द लागू करना चाहते थे।
बात इनके हकों की।
कुछ लोग हमें कहते हैं कि नकाब में रहो, कुछ लोग कहते हैं कि नकाब नहीं पहनना चाहिए, ये औरतों के ऊपर जाती है। हमारा कहना है हमें तय करने दो कि हमें क्या करना है।
कहानियाँ इनकी विविध चुनौतियों की।
हमारी जगह अगर लड़का होता, उनका बेटा होता, तो क्या वो नहीं करता क्या? मेरे लिए वो चैलेंज था कि मुझे ये करके दिखाना है, अगर लड़के कर सकते तो लड़के क्यों नहीं कर सकती।
मुझे ना कुशा नाम से बहुत चिढ़ाते थे, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मेरा नामकरण किया ना, तब मुझे निकिता नाम दिया गया है।
महिलाओं के नाम हमारी विशेष श्रृंखला
आधी आबादी
100 चेहरे
सोमवार 23 नवंबर से शाम 7:30 बजे PVC हिंदी के कार्यक्रम दिन भर में
और सुबह 8 बजे विश्व भारती में
100 महिलाओं से होगी मुलाकात bbchindi.com पर
और BBC हिंदी के YouTube चैनल पर भी।
आधी आबादी 100 चेहरे
तो जरूर सुनिएगा ये हमारी खास सीरीज जो आने वाली है सोमवार से। और अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कि आज के अखबारों में क्या कुछ छपा है। मानसी तमाम अखबारों को लेकर मौजूद हैं स्टूडियो में। मानसी,
अखबारों में जो सुर्खियां दिख रही हैं उनमें है पेरिस में हमला करने वालों को पकड़ने के लिए फ्रांसीसी पुलिस की मुठभेड़, प्रधानमंत्री मोदी का आतंक के वित्त पोषण पर रोक लगाने का बयान और दिल्ली में लोकपाल बिल को कैबिनेट की मंजूरी। नई दुनिया ने लोकपाल बिल के मुख्य मुद्दों को बिंदुओं में समझाया है और कहा है कि इस नए बिल में मुख्यमंत्री भी इसके दायरे में होंगे,
जन लोकपाल के दायरे में।
अमर उजाला ने कहा है फिरोज शाह कोटला में टेस्ट मैच की आस जगी, इस हेडलाइन के साथ इन्होंने खबर छापी है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले चौथे टेस्ट पर छाए संकट के बादल अब हट गए हैं। दैनिक भास्कर की एक खबर भी मेरा ध्यान खींच रही है, अखबार ने अलीबाबा के CEO जैक मा और अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा की तस्वीर छापी है। लिखा है एशिया पैसिफिक समिट में अमरीकी राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर जैक मा का इंटरव्यू लिया। ओबामा ने पूछा सरकार युवा उद्यमियों की कैसे मदद करे, जैक मा ने कहा बहुत आसान है, आप टैक्स खत्म कर दीजिए। दैनिक जागरण ने आजम खान जो कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री हैं उनका बयान छापा है, लिखा है मुल्क में आतंक पनपा तो मोदी की होगी जिम्मेदारी। इधर टेलीग्राफ ने जमायत उलेमाए हिंद के उस बयान को छापा है जिसमें उसने पेरिस में हुए हमलों की निंदा की है। जमायत उलेमाए हिंद भारत में देश की सबसे बड़ी मुस्लिम संस्था मानी जाती है। हिंदुस्तान ने छापी है एक खुशखबरी।
क्या खुशखबरी?
कहा है कि वेतन आयोग ग्रुप डी भर्ती की राह खोलने की तैयारी में है। दी हिंदू में एक बेहद दिलचस्प खबर छपी है जिसमें सीरिया के मैदान से एक 17 साल की भारतीय लड़की के बचकर निकलने की कहानी को छापा गया है। यह लड़की 2014 में इस्लामिक स्टेट के संपर्क में आ गई थी। एक चित्र छापकर अखबार ने लड़की के बचने की पूरी कहानी को समझाया है। छोटी ही सही लेकिन नवभारत टाइम्स ने जेम्स बॉन्ड की कहानी पर चली कैंची की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है।
सुना है सेंसर बोर्ड ने काफी कट लगाए जेम्स बॉन्ड की फिल्म में।
जी, अखबार में कहा गया है कि भारत में अब जेम्स बॉन्ड संस्कारी रूप में दिखेंगे। सेंसर ने फिल्म स्पेक्टर पर कैंची चलाई है जिसके बाद सोशल मीडिया में पहलाज निहलानी पर काफी बयान चल रहे हैं, उनकी आलोचना हो रही है। एक और खबर जनसत्ता में छपी है, इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान और उनकी पत्नी रेहम खान के बीच तलाक को लेकर वजहों की अटकलों को लेकर रेहम खान का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल हर कोई देने लग गया था और उन्हें लगा था कि जैसे मानो पूरा पाकिस्तान ही उनकी ससुराल हो।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए मानसी। और अब चलते हैं खेलों की खबरों की तरफ।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी 2 मुकाबलों के लिए भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीरीज में 1-0 से आगे भारतीय टीम प्रोटीज टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए 25 नवंबर से नागपुर और 3 दिसंबर से दिल्ली में उतरेगी। सीरीज का दूसरा मुकाबला कल बारिश की वजह से ड्रॉ पर खत्म करना पड़ा। इस मैच में सिर्फ पहले ही दिन का खेल हो पाया था। और अब बात जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की। 8वें जूनियर एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय टीम का सामना ओमान से होगा। 8 देशों के बीच हो रही इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपने पूल के सभी मैच जीतकर टॉप पर रही, जबकि दूसरे ग्रुप में ओमान की टीम को सबसे निचला स्थान मिला। ऐसे में भारतीय टीम के लिए ये मैच जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं समझा जा रहा। भारतीय टीम के कोच हरेंद्र सिंह का कहना है कि इस मैच में बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है।
हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मैं जो सेमीफाइनल हम लोग खेलेंगे, अगर क्वार्टर फाइनल निकलते हैं तो बहुत फ्रेश लेग से कुछ प्लेयरों को जरूरत है तैयार करने की, क्योंकि उन्होंने लगातार 3 मैचेस खेले हैं और उससे उनको यह होगा कि एक नई एनर्जी मिलेगी और नया दिशा मिलेगा, तो उसमें उन लोग फ्रेश लेग से उतरेंगे तो ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं।
भारत ने पहले मैच में जापान को 2-1, दूसरे मुकाबले में मलेशिया को 5-4 और आखिरी लीग मैच में चीन को 4-1 से हराया। और अब बात साल के आखिरी टेनिस टूर्नामेंट एटीपी टूर फाइनल्स की। एटीपी टूर फाइनल्स में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना अपने रोमानियाई जोड़ीदार फ्लोरिन मर्जिया के साथ आज इटली की जोड़ी सिमोन बोलेली और फेबिया फोर्गेनी का सामना करेंगे। बोपन्ना और मर्जिया की जोड़ी ने अपने पिछले दोनों राउंड रॉबिन मैच जीते हैं। वहीं सिंगल्स में रोजर फेडरर जापान के निशिकोरी से भिड़ेंगे, साथ ही नोवाक जोकोविच का सामना थॉमस बर्डिच से होगा। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब एक नजर उन खबरों पर जो आज बनी रहेंगी सुर्खियों में।
गुरुवार को विश्व टॉयलेट दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन शौचालय की कमी और इसके कारण होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश होगी। बैंक ऑफ जापान आज टोक्यो में देश की मौद्रिक नीति संबंधी बैठक करेगा। जापानी मुद्रा येन की मुद्रास्फीति के कारण देश में मंदी है और उम्मीद की जा रही है कि बैठक में मुद्रा प्रोत्साहन कार्यक्रम पर चर्चा होगी। अमरीकी पॉलिसी प्लानिंग निर्देशक डेविड मैकिन म्यांमार के विदेशी नीति विशेषज्ञों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मिलने के लिए म्यांमार रवाना होंगे। उम्मीद है कि वे हाल में हुए चुनावों और देश में सुधारों की जरूरत पर बातचीत करेंगे। भारत में गुरुवार को 7वां वेतन आयोग सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। माना जा रहा है कि इसमें केंद्रीय कर्मचारियों का मेहनताना और पेंशन बढ़ाने संबंधी सुझाव हो सकते हैं। आयोग के सुझावों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के हजारों कर्मचारी गुरुवार से एक साथ एक दिन की छुट्टी पर जाने वाले हैं। ये कर्मचारी केंद्र सरकार पर पेंशन नीतियों में सुधार की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनका आरोप है कि केंद्र सरकार आरबीआई की स्वायत्तता खत्म करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को राजस्थान के जयपुर में रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी। गुरुवार को कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी 21 सदस्य के एक दल के साथ राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। वे पंजाब के फरीदकोट फायरिंग के मामले की जांच जल्द पूरी करने की मांग करेंगे। इस साल की 14 अक्टूबर को फरीदकोट के बहवल कलां में हुई पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज 5 दिन की यात्रा पर चीन के लिए रवाना होंगे। पिछले 10 वर्षों में भारतीय गृह मंत्री की यह पहली चीन यात्रा है। फीफा के 209 सदस्य फुटबॉल संघों की पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आज रिपोर्ट पेश करेगा। विश्व भर में अपने 209 सदस्य फुटबॉल संघों को फीफा लाखों डॉलर देती है।
और अब कार्यक्रम के समापन से पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। पेरिस में हुए हमलों के मास्टरमाइंड अब्दुल हमीद अबाउद को पकड़ने की कोशिश में पुलिस ने 100 डिनी में एक घर को घेरा। चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि उसने 2 विदेशी बंधकों की हत्या कर दी है। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर पेरिस से अमेरिका की ओर जा रहे एयर फ्रांस के 2 विमानों का रास्ता बदल दिया गया है। होंडुरास की पुलिस ने कहा है कि उन्हें चोरी किए गए ग्रीक पासपोर्ट पर सफर कर रहे 5 सीरियाई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ब्रितानी संसद के ऊपरी सदन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 16-17 साल की उम्र के युवाओं को नियोजित जनमत संग्रह में एक वोट दिए जाने का समर्थन किया है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार भारत में अभी के लिए बस इतना ही, एक घंटे बाद आपसे मिलेंगे कार्यक्रम विश्व भारती में। अभी अशोक कुमार को दीजिए अनुमति, इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। नमस्कार।